आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। मंगलवार 21 मार्च है, यह दिन भर मैं हूं नितिन ठाकुर। खालिस्तान की पैरोकारी करने वाले भगोड़े अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस आज भी जद्दोजहद करती रह गई। क्या वो पंजाब के बाहर भाग गया है और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सेहत कैसी है?
तरन तारण है, मोगा है, संगरूर है, कई इलाके हैं जैसे अमृतसर में अजनाला हो गया, वहाँ पे अभी भी रिस्ट्रिक्शंस जारी हैं।
दिन भर की शुरुआत इसी खबर से करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को के दौरे पर हैं। रूस और चीन की यारी भारत के लिए क्या परेशान करने वाली है, एक्सपर्ट से पूछेंगे। फिर इतिहास को नए सिरे से लिखने की बात, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की आज एक बैठक थी, उसमें क्या तय हुआ?
जो भारत की जो स्थानीय भाषाएं हैं, चाहे वो मराठी है, गुजराती है या पंजाबी है या और जो भाषाएं हैं, उनमें जो इतिहास दर्ज है, इस प्रोजेक्ट की आज बैठक थी।
और मेहुल चौकसी फिर से खबरों में आ गए। उनके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस खत्म कर दिया है, तो अब सरकार का नया प्लान क्या है? आखिर में भौचक भी रहेगा, लेकिन पहले सुनते हैं शुभम तिवारी से 60 सेकंड्स हेडलाइंस।
शुक्रिया नितिन। अमृतपाल सिंह के खिलाफ लगाया गया NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 72 घंटे के बाद भी अमृतपाल पुलिस गिरफ्त से बाहर, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट अब तक की कार्रवाई से नाखुश। दिल्ली का बजट कल सुबह 11 बजे विधानसभा में होगा पेश। केजरीवाल सरकार के बजट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ, प्राइवेट अस्पतालों में कल बंद रहेगी इमरजेंसी सर्विस। आज ही राजस्थान विधानसभा में 2 घंटे की बहस के बाद बिल हुआ है पारित। बिहार बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट हुआ घोषित। टॉपर्स को मिलेंगे 1 लाख रुपए कैश, इसके अलावा लैपटॉप और किंडल ईबुक रीडर। यूपी में बनेंगी 20 नई हाईटेक जेल। क्षमता से अधिक कैदी होने पर सरकार ने लिया फैसला। केरल विधानसभा में बिना चर्चा के बिल हुआ पास। विपक्ष का हंगामा, अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित। और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अचानक यूक्रेन दौरे पर निकले, पोलैंड से ट्रेन के जरिए पहुंचेंगे कीव।
यह दिन भर मैं हूं नितिन ठाकुर। अमृतपाल आखिरकार गया कहां? शनिवार को उसकी धरपकड़ के लिए शुरू हुए पुलिसिया ऑपरेशन के 72 घंटे बीत गए, लेकिन यह सवाल सवाल ही है। जवाब की जगह महज अफवाह है। क्या पुलिस को छिपा रही है? अमृतपाल फरार भी हुआ तो कैसे हुआ? अगर गया तो गया कहां? किसी दूसरे राज्य में या किसी और देश में? इमाम सिंह खेरा अमृतपाल सिंह के वकील हैं। उन्होंने आज इस मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसके बाद कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि और लोग गिरफ्तार हो जाएं और अमृतपाल सिंह ना हो।
माननीय जज साहब ने भी बोला है भी जो इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतने ज्यादा पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता भी भाई अमृतपाल सिंह के जो बाकी साथी सारे हैं। एडवोकेट जनरल साहब ने भी कहा भी बाकी जो साथी सारे हैं वो गिरफ्तार हो जाएं और भाई अमृतपाल सिंह ना हो, जज साहब ने कहा ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इस पे एक और बड़ी ज्यादा जरूरी चीज है, एडवोकेट जनरल साहब ने ये भी कहा भी इसमें कोई भी फायरिंग नहीं की गई, सभी को बिना किसी फायरिंग किए गए उन्होंने पकड़ लिया गया है।
हाईकोर्ट ने पुलिस के ऑपरेशन को इंटेलिजेंस फेल्योर कहा और पूछा कि 80,000 पुलिस कर्मी क्या कर रहे थे जो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। 4 दिन बाद इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतपाल के समर्थकों के पकड़े जाने पर कहा कि माहौल खराब करने की हर कोशिश नाकामयाब होगी।
पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।
लेकिन अपने तकरीबन 6 मिनट के संदेश में उन्होंने ना तो अमृतपाल सिंह का जिक्र किया, ना ही वारिस पंजाब दे संगठन का। एक और बात, पंजाब सरकार ने खालिस्तान समर्थक 23 सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है। इनमें संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान का हैंडल भी है। इन्होंने अमृतपाल के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की निंदा की थी। वहीं पंजाब के कुछ इलाकों में इंटरनेट बहाल कर दिया गया है, लेकिन संवेदनशील इलाकों में पाबंदी 23 मार्च तक जारी रहेगी। राज्य में कानून व्यवस्था की अभी स्थिति क्या है, ये हमने पूछा जालंधर में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर कमलजीत संधू से।
देखिए, पंजाब में जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण है। जगह जगह जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी काफी हद तक खुल चुकी है। प्लान मार्चेस अभी भी चल रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन की बात आ रही है, मोबाइल रिस्ट्रिक्शन की बात है, वहाँ पे तरन तारण है, मोगा है, संगरूर है, कई इलाके हैं जैसे अमृतसर में अजनाला हो गया, जो SAS नगर मोहाली में पड़ता है वहाँ पे YPS चौक हो गया, वहाँ पे अभी भी रिस्ट्रिक्शन जारी है और सेंसिटिविटीज को देखते हुए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन अभी भी बरकरार रखी गई है। लेकिन पंजाब ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा है, इक्का दुक्का जगह थोड़ा हमने देखा है कि कुछ तरह का प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो इलाके हैं वो बिल्कुल ठीक रहे हैं। जहाँ पे जलंधर, जहाँ पे अमृतपाल हुआ है का जो इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे उसको केस करने की कोशिश की और अरेस्ट करने की कोशिश की, महतपुर इलाके में कोई दुकानें बंद नहीं थी, जिसे कहते हैं कि कोई नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट नहीं हुई है, तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो नॉर्मलसी बरकरार है।
कमलजीत, अमृतपाल के फरार होने की जो बातें हो रही हैं, तो करंट लोकेशन को लेकर कुछ अभी स्थिति साफ हुई है क्या?
देखिए, एक स्पेशल क्रैक टीम बनाई गई थी पंजाब पुलिस की, उसमें DGP गौरव यादव हैं, उनके नीचे अगर हम बात करें राजेंद्र धोके हैं जो कि DG हैं और खासतौर पे स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं जो दूसरे हैं साथ में जो काउंटर इंटेलिजेंस देखते हैं अमित प्रसाद हैं, जो SSP हैं चाहे वो मोगा के हों, चाहे वो हम बात करें DIG हैं स्वप्न शर्मा हैं, और हम बात कर रहे हैं SSP अमृतसर रूरल, ये सब इस ऑपरेशन में शामिल थे और एक स्पेशलाइज ऑपरेशन जारी किया गया। लेकिन एक हद तक बात यह है, और जो अब वीडियोज आ रही है कि किस तरह से वो अपनी मर्सिडीज कार से ब्रेजा गाड़ी में बैठे और उसके बाद प्लेटिना और बुलेट दो गाड़ियां हैं जिसमें ये जो 5 समर्थक हैं उनके साथ भागे हैं अमृतपाल, और कहा जा सकते हैं अभी एक अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है जलंधर के ही कहीं आसपास के इलाके में होना चाहिए, लेकिन ऐसी भी कई रिपोर्ट्स आ रही हैं और कुछ बाकी अनऑफिशियली कोई लोग बोल रहे हैं कि बाहर जा सकते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस काफी कॉन्फिडेंट है कि अमृतपाल अगर कहीं से ढूंढा जाएगा तो वो पंजाब से है।
अच्छा, चूंकि बात इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट की है, तो कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इसमें केंद्र का दखल वाजिब है अगर वो होता है तो। क्या दिल्ली की तरफ से कोई ठोस पहलकदमी आपको दिखी इस मामले में?
देखिए, ये जो पूरा ऑपरेशन है इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसमें जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि होम मिनिस्ट्री और फिर क्लोज कोऑर्डिनेशन जो पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार का है, ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पंजाब पुलिस का है, ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन है जहाँ पे सेंट्रल की मदद से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बयानबाजी इतनी नहीं हो रही है। BJP खासतौर पे जिस तरह से ट्रैक कर सकती है, वहां पे हमने उतना रिएक्शन नहीं देखा है, तो जाहिर सी बात है कि एक पेज पर है, और खासतौर पे जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो काफी हद तक एक पेज पे होना काफी लाजमी बात भी है और काफी जरूरी भी है, और जिस तरह से बयानबाजी चल रही थी चाहे वो अमृतपाल की तरफ से है, तो एक समय ये भी आ गया था खासतौर पे जब अजनाला भी घटना हुई कि कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी हो गया था, और ये एक्शन काफी देर बाद लिया गया है, लेकिन लिया जरूर गया है और अब उसका अंजाम भी सामने नजर आ रहा है, और एक तरह से क्रैकडाउन बोले चाहे खालिस्तानी आइडियोलॉग्स पे बोले, लेकिन जो समर्थन की बात कर रहे थे कि कितना लोग समर्थन में आएंगे, वो अभी तक समर्थन सामने नजर नहीं आया है। हमें जो देखा है कि बाहर के ब्रिटिश हाई कमीशन, ये इंडियन हाई कमीशन हो ब्रिटेन में या बाकी जगह हो, वहां पे ये सब जो चीजें हैं वो सामने आई हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है वो काफी हद तक सही रही है।
ये थी जालंधर में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर कमलजीत संधु। ऑडियो क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ इसलिए थी क्योंकि पंजाब में इंटरनेट और कॉलिंग अभी धीरे धीरे बहाल हो रही है। एक जानकारी आखिर में, और गिरफ्तारी के सवाल तो है ही, इससे इतर अमृतपाल का जो पैसे रुपये का हिसाब किताब है उस पर भी नकेल कसने की तैयारी है। अमृतपाल की NRI पत्नी किरणदीप कौर और परिवार के बैंक खातों, मूवमेंट और संबंधों की जाँच की जा रही है। जांच के लिए अमृतपाल के 500 करीबियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। और अब मॉस्को की बात। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रूस के दौरे पर हैं। ग्रैंड वेलकम मिला उन्हें कल रूस पहुंचने पर। राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। दौरे की टाइमिंग भी समझिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद चीनी राष्ट्रपति का यह पहला दौरा है। रूस पर लगे प्रतिबंधों के बीच चीन और ज्यादा रूस के करीब आ गया है। हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन को यूक्रेन में छिड़ी जंग का दोषी ठहराया है, और अब वेस्टर्न देशों और अमेरिका के खिलाफ पुतिन जो समर्थन का बेस तलाशना चाहते हैं, चीन उसमें अहम कड़ी है। बीते 7 वर्षों में चीन और रूस के बीच का व्यापार जिस तरह से बढ़ा है, ये चीन और रूस के अच्छे संबंधों की गवाही देता है। 2015 में चीन से करीब $35 बिलियन का इम्पोर्ट और $25 बिलियन का एक्सपोर्ट करने वाला रूस अब $75 बिलियन का इम्पोर्ट और $115 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। जाहिर है ऐसे वक्त में पुतिन को शी जिनपिंग और चीन से बड़ी राहत है, तब जब दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा उन्हें यूक्रेन में जंग के कारण दरकिनार कर चुका है। कल यूएसए का भी बयान आया चीनी राष्ट्रपति के दौरे पर। यूएस ने शी जिनपिंग से अपील की है कि वो जंग रोकने के लिए पुतिन से बात करें। मुमकिन है जिनपिंग और पुतिन के बीच इस बारे में बात हो, लेकिन जिनपिंग के इस दौरे की और क्या अहमियत है, आज दूसरे दिन क्या क्या हुआ, क्या होने वाला है, ये समझने के लिए हम पहुंचे जेएनयू में रशियन स्टडीज के प्रोफेसर राजन कुमार के पास।
तो ये विजिट रूस के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी ऑर्डर इशू किया था, जिसमें अरेस्ट वारंट की बात हुई थी। हालांकि यह जो अरेस्ट वारंट है काफी सिम्बॉलिक है, लेकिन जो पश्चिमी देशों की जो नीति है, जिसमें कि रूस को अलग करने वाली नीति, ये अभी चलने वाली है लंबे दिनों तक। वैसी स्थिति में चीन का रूस के साथ रहना बहुत ही जरूरी होता है, और बहुत सारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो रूस में विजिट भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो वैसे में शी जिनपिंग का विजिट जो है उसको एक तरह से लैंडमार्क के रूप में रूस देख रहा है, और उसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो कि जो एनर्जी का इश्यू है, एनर्जी का डिपेंडेंस एक तरह से जो रूस पे है चीन का, तो उस पे बातें हुई हैं। उसके अलावा जो मिलिट्री कॉपरेशन दोनों देशों के बीच में है, सामरिक जो संबंध है, इस पे बहुत सारी बातें हुई हैं। और एक तरह से चीन यह भी कहने की कोशिश कर रहा है कि इस कठिन और विषम परिस्थिति में भी चीन रूस के साथ रहेगा, और उस दृष्टिकोण से यह विजिट रूस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और बाकी सारे जो होते हैं, जो हमेशा की बात करते हैं, मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, और जो कंटिन्यूड कोऑपरेशन है उसकी बात करते हैं, पश्चिमी देश किस ढंग से रूस को भी और चीन को भी तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर बात होती है। पश्चिमी देशों के विरोध में उनका एक तरह से एक रिटोरिकल जो एक स्टेटमेंट आता है, तो वह भी होगा। तो ये इन्हीं सारे बातों पे मुझे लगता है कि मुख्य फोकस इस पर भी रहा है। एक बात जो बताई जा रही थी कि चीन का जो पीस प्रपोजल है यूक्रेन को लेकर, उस पर भी बातचीत हुई है, लेकिन उस प्रपोजल को बाकी देश, अभी तक पश्चिमी के देश बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं, और उस पे बहुत ज्यादा निगोशिएशन का स्कोप भी नहीं है। और चीन को जो बाकी दक्षिण के देशों को साथ में लेना चाहिए, और चीन ने वह भी अभी लेने की कोशिश नहीं की है, तो उस पे बहुत ज्यादा कोई प्रोग्रेस होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। हालांकि रूस ने बोला है कि जो चीन का पीस प्रपोजल है उसको सपोर्ट करता है, लेकिन चूंकि बाकी पश्चिमी देश अभी सपोर्ट उसको नहीं करते हैं, यूएन भी नहीं करता है, और जो बाकी के देश हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, वह भी उनके साथ अभी इस मुद्दे पे एक तरह से सहमति नहीं है उनकी, तो इसमें कोई प्रोग्रेस होने की संभावना मुझे नहीं लगती है।
राजन जी, दोनों देशों के संबंध बीते कुछ दिनों में जिस तरह से बदले हैं, जिस पर बात भी हो रही है, खासकर रूस के यूक्रेन में जंग छेड़ने के बाद, आपको ये बदलाव किस तरह का दिखता है?
जी, जैसा कि मैंने बोला कि रूस की निर्भरता चीन पे काफी बढ़ गई है, दोनों देशों में जो व्यापार होते हैं उसमें भी काफी इजाफा हुआ है। लगभग हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे 18% 19% पहले की तुलना में बढ़ोतरी है, और दोनों का ट्रेड में भी लगभग 190 बिलियन डॉलर का ट्रेड अभी हो रहा है, जो कि काफी पहले से ज्यादा है, और एक उनका टारगेट है 200 बिलियन का, तो वह भी बहुत जल्दी वो अचीव कर लेंगे। और हर एक फोरम में, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वहां पे भी चीन रूस को सपोर्ट करता है। तो वैसे ये सारी जो एक तरह से मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी है, और एक जो चीन कभी भी रूस को ओपनली कभी भी किसी फोरम में क्रिटिसाइज नहीं करता है, या कभी भी डेमोक्रेसी और इस ढंग की बात जो कभी कभी भारत करता है उसकी बात चीन नहीं करता है, तो इन कारणों से मुझे लगता है कि रूस की निर्भरता चीन पे काफी बड़ी है।
एक मेरा और सवाल है, भारत के लिए रूस और चीन की इस दोस्ती को, या कहूं कि बढ़ती दोस्ती को, किस तरह से देखा जाए, ये हमारे लिए कैसी साबित होगी?
देखिए, हमें भारत इसके लिए बहुत ही कंसर्न्ड है, कॉशस है। भारत आइडियली भारत नहीं चाहेगा कि चीन और रूस के संबंध बढ़ें, और लेकिन भारत रूस की मजबूरी को समझता है, क्योंकि पश्चिमी के देश सारे अलग थलग कर दिए, तो वैसे में चीन के बहुत सारे मित्र अभी के समय में रूस के पास नहीं है। तो जो चीन की निर्भरता है उसको भारत समझता है, चीन का जो कोऑपरेशन है वह भारत समझता है, भारत यह भी समझता है कि यह जो अलायंस है वह भारत के विरोध में नहीं है, ये मुख्यतः पश्चिमी देशों के विरोध में है। तो एक जो कॉपरेशन है उसमें भारत कंसर्न है, कॉसेस है, लेकिन चूंकि भारत के संबंध खुद रूस से बहुत अच्छे हैं, और तो मुझे लगता है कि भारत इस चीज को मानता है कि इस ये जो डेवलपमेंट है, ये जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसको भारत रोक नहीं सकता, इसकी इसकी जो धार है उसको कम कर सकता है, या भारत के विरोध ना हो जाए इसको रोकने के लिए भारत की अपनी नीति है जिसमें कि रूस से जो इसके काफी अच्छे ऐतिहासिक और अभी कंटेम्प्रेरी जो संबंध है उसको भारत मजबूत बनाए रखने की कोशिश करता है, ताकि कभी भी यह जो पार्टनरशिप है भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उसमें भारत सक्सेसफुल है।
बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी। क्या भारत सरकार इतिहास को नए सिरे से लिखवाएगी? पिछले महीने लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा गया था। प्रश्न था कि इंडिया काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ICHR जो शिक्षा मंत्रालय के ही मातहत काम करता है, क्या वो इतिहास के पुनर्लेखन की कोई योजना बना रहा है? इस सवाल के जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके एक तबका यह आरोप लगाता रहा है कि इतिहास बदला जा रहा है, या इशारों ही में कम से कम बदलाव का एक प्रयास तो हो रहा है। आज इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसमें भारत के विस्तृत इतिहास पर बात होनी थी। जब पहले से इतिहास के पुनर्लेखन को लेकर आलोचनाएं हो ही रही हैं, ऐसे माहौल में जो आज मीटिंग हुई उसका एजेंडा क्या था, क्या इसमें तय हुआ, ये हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर राहुल गौतम से जो इस मीटिंग पर निगाहें रखे हुए थे।
दरअसल जो काउंसिल का कहना है कि अब तक जो भारत में इतिहास लिखा गया है वो दो सोर्सेस से आया है। एक तो आया है पर्शियन सोर्सेस से, जो कि जब मुगल से या दिल्ली सल्तनत थी उस समय पे जो लिखा गया इतिहास, और एक आया है अंग्रेजी सोर्सेस से। इस पर्ट के थ्रू जो काउंसिल है वो ये चाहता है कि जो भारत की जो स्थानीय भाषाएं हैं, चाहे वो मराठी है, गुजराती है या पंजाबी है या और जो भाषाएं हैं, उनमें जो इतिहास दर्ज है, चाहे वो कोई शिलालेख हो, चाहे वो कोई कोई पांडुलिपि हो, उसमें जो इतिहास दर्ज है उसको रिकॉर्ड पे लाया जाए, उसकी भी एक वो बनाई जाए क्रोनोलॉजी कि भारत के अंदर क्या घटा और यहाँ के लोगों ने क्या रिकॉर्ड किया या क्या चीजें लिखी गई। इस प्रोजेक्ट की आज बैठक थी। जो जानकारी मिली है हमको सूत्रों के मुताबिक, अगले 3 से 4 दिनों के बीच में एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी इस प्रोजेक्ट के बाबत, जिसमें जो भी व्यक्ति इस प्रोजेक्ट में अपने आप को इंक्लूड करना चाहते हैं, इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर उनके पास कोई ऐसी कोई पुराना कोई पांडुलिपि है या कोई पुराना इंस्क्रिप्शन है जिसके थ्रू वे बता सकें, जो कि पर्शियन और अंग्रेजी में ना हो और भारत का जो इतिहास है उसमें कुछ ऐड ऑन कर सके, तो वो वेबसाइट पर जाकर उसमें अपनी जानकारी दे सकते हैं और जो अभी तक जो जो भी कुछ लिखा गया है इस प्रोजेक्ट में उसकी जानकारी भी उस वेबसाइट पे अवेलेबल होगी।
राहुल, आप ICHR के मेंबर्स से मिलते ही रहते हैं, वो शिक्षा के भगवाकरण वाले आरोपों पर क्या कहते हैं?
जहाँ तक काउंसिल का कहना है तो साफ तौर पर ये कहना है कि हम नया इतिहास नहीं गढ़ रहे हैं। हम बकायदा एक इसको लेकर संसद में सवाल पूछा गया था, अगर मुझे याद है अच्छी तरीके से, तो मनीष तिवारी ने ये सवाल पूछा था कि क्या जो काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, क्या दोबारा से इतिहास लिख रहा है? तो उसके बारे में जो मंत्री है कंसर्न, HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा था कि हम हिस्ट्री को रीराइट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में कुछ गैप्स हैं, उन गैप्स को फिल किया जा रहा है। तो यही मैंडेट है। मैं आज भी मुलाकात करी मैंने जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं उमेश कदम, उन्होंने मुझे आज भी ये कहा कि हम इतिहास को दोबारा से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ओवरलुक किया गया, जिनको इग्नोर किया गया। उनका यह आरोप है कि जानबूझकर जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने इग्नोर किया, और इसीलिए हम उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अभी तक जो इतिहास में नहीं झलकता, क्योंकि अभी तक आप उसको सिर्फ आप कह सकते हैं एक थर्ड पर्सन के तौर पर देखते हैं कि बाहर से जो लोग आए वो लिख रहे हैं हमारे बारे में, तो भारत का क्या इतिहास है, वो भारत की भाषाओं में कितना दर्ज है, उसको लेकर हम आगे आ रहे हैं। और ये जो तमाम आरोप लगते हैं ये कतई सही नहीं है और पूरी तरीके से बेबुनियाद है।
बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। आज से करीब 5 साल पहले जनवरी 2018 में बैंक फ्रॉड की घटना सामने आई। हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा, लेकिन इस घटना के सामने आने से पहले ही दोनों देश छोड़कर भाग गए। हालांकि इस घोटाले की शुरुआत 2011 में ही हो गई थी। मामला सामने आया तो CBI ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, दोनों को भारत लाने की कोशिश भी हुई, लेकिन सरकार नाकाम रही। हालांकि डोमिनिका में 51 दिनों तक वो जेल में रहा, लेकिन फिर जुलाई 2021 में जमानत पर रिहा हो गया। इन सबसे इतर इंटरपोल ने 2018 में चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, तब से उसे भगोड़ा भी कहा जाने लगा, लेकिन 5 साल के बाद अब खेल पलट गया है, क्योंकि मेहुल चौकसी का नाम इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस वाली जो लिस्ट है उससे हटा दिया गया है। चौकसी ने अपने खिलाफ रेड नोटिस जारी करने संबंधी सीबीआई के आवेदन को चुनौती दी थी और मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था। अब इस वाकये ने भारत सरकार पर भी कई सवाल खड़े किए हैं, सीबीआई से जवाब मांगे जा रहे हैं। मेहुल चौकसी का नाम इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से हटाने के पीछे दलील क्या दी गई, यह जानने के लिए बात की हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर जितेंद्र बहादुर सिंह से, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं।
देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इंटरपोल के पास उसने काफी दिनों से इस बात की गुजारिश की थी कि उसकी तबीयत खराब रहती है और उसको जो इस पूरे मामले में फंसाया गया है पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मामले में, और इस तरीके की दलील उसकी तरफ से लगातार इंटरपोल को दी जा रही थी। इंटरपोल की जो 5 मेंबर्स कमेटी है, उस कमेटी ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की थी और इसे कमीशन फॉर कंट्रोल फाइल्स कहा जाता है इस कमेटी को, और ये कमेटी एक लीगल कमेटी होती है जो अलग तरीके से नियम और कानून के हिसाब से चलती है, जिसमें कहा जा रहा है कि मेहुल चौकसी लगातार इस कमेटी से संपर्क में था और उसने बताया था कि अगर उसको भारत की जेलों में भेजा जाएगा तो वहां की कंडीशन खराब है। उसने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया और इस बात को देखते हुए मेहुल चौकसी के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई थी, उस रेड कॉर्नर नोटिस को इंटरपोल में मेहुल चौकसी के अपील के बाद इस नोटिस को रद्द कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि मेहुल चौकसी अब, जबकि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस नहीं है, तो वो दूसरे देशों में भी जा सकता है, और इस वजह से अभी जब ऑफिशियल कंफर्मेशन करने की कोशिश सीबीआई से किया गया तो सीबीआई की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सीबीआई इंटरपोल से एक बार फिर संपर्क में है और वो ये कोशिश कर रही है कि मेहुल चौकसी के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था उसको बरकरार रखा जाए, और इसके लिए वो लगातार संपर्क बना रही।
जितेंद्र, भारत सरकार की प्लानिंग अब क्या होने वाली है? क्या सरकार के पास अब कोई प्लान है मेहुल चौकसी को वापस लाने का?
देखिए, मेहुल चौकसी जो है 2018 में देश छोड़कर के वो भाग गया था, और ये कहा जा रहा है कि जब वो देश छोड़कर के भागा था तो उसके 10 महीने बाद ये एक कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। तब तक वह एंटीगुआ और बरमूडा में छिपा हुआ था और उसके अलावा आसपास की कंट्रीज में वो छिपा हुआ था। बाद में उसको उस कंट्री एंटीगुआ की नागरिकता मिल गई, और जब सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर के एक एप्लीकेशन दिया तो उसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, लेकिन जिस तरीके से उसने आगे दलील दी है और उस दलील के बाद उसका रेड कॉर्नर नोटिस रद्द हो गया है। माना जा रहा है कि सीबीआई जो है इस पूरे मामले में अभी कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि वो अभी जो रेड कॉर्नर इंटरपोल जो है उस के संपर्क में है और उनके अधिकारियों से एक बार फिर गुजारिश करेगी कि इस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है और भारत में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, इस वजह से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जो जारी हुआ था उसको बरकरार रखा जाए और उसके खिलाफ जो है इस तरीके की कार्रवाई किया जाए, क्योंकि भारत में इंटरपोल का जो देखती है वो सीबीआई होती है और नोडल एजेंसी सीबीआई को कहा जाता है, इसलिए सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है। अब देखना ये होगा कि सीबीआई की जो गुजारिश है उसका कितना असर इंटरपोल पर होता है।
और अब भौचक की बारी, लेकर आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी।
अस्सी के दशक की फिल्मों में हीरो की पहचान थी बेल बॉटम पतलून, हीरोइन की पहचान थी सर पर बड़ा सा जूड़ा, और विलन बनने की एलिजिबिलिटी क्या थी? वो थी एक चाकू। ना 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 ना, ना। ऐसा वैसा चाकू नहीं, एक खास तरह का चाकू जिसके हैंडल पर लगा बटन दबाते ही वो खट से खुल जाता था और हीरो सतर्कता से विलन का खुला हुआ मुंह देखता था। विलेन इतराकर चाकू उसके सामने लहराता था और कभी कभी तो कह भी देता था, ज्यादा होशियारी की तो ये रामपुरी घुसेड़कर भेलपुरी निकाल लूंगा। उन दिनों अगर आपके पास ये वाला चाकू नहीं है तो आप गुंडा समाज के सदस्य नहीं माने जाते थे। कभी सोचा आपने कि वो चाकू दुनिया को किसने दिया? इसका योगदान जाता है उत्तर प्रदेश के रामपुर को। रामपुरी चाकू के नाम से मशहूर इस चाकू ने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में भी खूब नाम कमाया। भौचक खबर यह है कि चाकू की इसी लोकप्रियता को देखते हुए रामपुर में एक चाकू चौक बनाया गया है। जौहर चौक पर चौराहे पर बीचों बीच एक बड़ा सा अधकुला रामपुरी चाकू बनाया गया है, जिसका हत्था सुनहरा है और ब्लेड सिल्वर कलर का है, जो आसमान की तरफ खुला हुआ दिख रहा है। लगभग 6 मीटर लंबी पीतल और स्टील के मिक्सचर से ये विशाल काय चाकू दूर ही से चमकता हुआ लगता है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 45 लाख के खर्च से बनाए गए इस बड़े से चाकू के बारे में कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चाकू है। बाकायदा इस चाकू का स्थानीय नेताओं ने उद्घाटन किया, इसे फूल मालाएं पहनाई गईं और इसका अनावरण किया गया। अथॉरिटी का कहना है कि चाकू चौक पर इस चाकू की स्थापना का मकसद जिले में चाकू उद्योग को प्रोत्साहित करना है और इससे जुड़े लोगों के कारोबार के संसाधनों से जोड़ते हुए रोजगार के मौकों को बढ़ाने पर जोर देना है। इससे रामपुर के चाकू उद्योग को और ताकत मिलेगी और लोग इस चाकू चौराहे को देखने के लिए भी दूर दूर से आएंगे। इस चाकू चौक पर चारों तरफ फोकस लाइट, शाम के वक्त बैठने के लिए बेंच, खूबसूरत हरी घास भी लगाई गई है ताकि लोग इस चाकू चौक पर बैठकर सुकून के पल बिता सकें। मैं ये सोच रहा था कि ये जगह रामपुर के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी कुछ मुफीद साबित होगी क्या? अगर होगी तो क्या वो कहेंगे, जब आंचल रात का लहराए और सारा आलम सो जाए तो मुझसे मिलने शमा जलाकर चाकू चौक पर आ जाना। आज तक रेडियो।
शुक्रिया जमशेद। दिन भर में आज इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। हेलो डॉक्टर का नया एपिसोड आ गया है, उसे जरूर सुनिएगा। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए। आज तक रेडियो सुनते रहिए।